सजा है राज ऋषियों का दिव्य राज दरबार, हे स्वराज अधिकारियों स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। स्वराज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले स्व पर राज्य होना जरूरी है, और आप भगवान के घर में आकर के जरूर अपने स्व पर शासन करके स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और अनेक आत्माओं तक ये ऋषि और कृषि की संस्कृति को पहचान करके उन आत्माओं को, किसानों को श्रेष्ठ महान दिव्य बनाएंगे। तो आप विश्व सेवाधारी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम बरसा रहे, देख के आप विभूतियों को सबके मन हर्षा रहे। वाह विश्व सेवाधारियों, वाह विश्व कल्याणकारियों, गुंजित जय जयकार, स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। आप सबका आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम हमारी भारत संस्कृति की एक परंपरा है जो परमात्मा स्मृति में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, किसने खूब कहा है, हम खुदा के बंदे हैं, खुद की बंदगी चाहिए, दूसरे के घर में क्या है ये चर्चा न चाहिए, रहमत उनकी है हर पल, हर घड़ी हर पल रहे, सिर सदा दरबार में सजदे में झुकना चाहिए। वह मालिक जहान है, दरियाए अमन है, बना सके फरिश्ता हमें रहनुमाई चाहिए। आप तो बस आप है, आप तो शहंशाह है, लो दुआए इस जग से अब तो ये खिदमत चाहिए। आप है दरियाए मोहब्बत, हर ख्याले खास में आप ही आप है, अर्श में रहकर भी जहां से रूबरू थे फर्श तक, फर्श पे रहकर भी निगाह है अर्श पर, चाहिए श्रेष्ठ भावना को दिन में लेते हुए आओ 3 मिनट के लिए परमात्मा स्मृति में खो जाए, आवाहन करे उस परमात्मा शक्ति का, और आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करे 3 मिनट परमात्मा स्मृति में। आज हम कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आयोजित सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज राष्ट्रीय सम्मेलन एवं रिट्रीट के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित है। सबके दिल की यही आवाज होती है, जब मेरी इनायत पर, जब तेरी इनायत पर मेरी नजर होती है, मेरे मालिक मेरी आंखें भर जाती है, तो दे रहा है मुझे इस कदर कि हाथ दुआओं में उठने से पहले झोली भर जाती है, हाथ दुआओं में उठने से पहले झोली भर जाती है। ऐसे प्यार का सागर परमात्मा, जिसका प्यार अपरम अपार है, तो इसी प्यार से अपनी झोली को भरते हुए अनेक आत्माओं को भी हम परमात्मा प्यार से भाव विभोर करें। इसी दिव्य भावनाओं को लेते हुए हमारे सामने कुमारिया एक सुंदर डांस लेकर के आ रही है, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का, लुटाते चले। कुमारी अंबिका ओडिशा से, वेदांती नागपुर से, कुमारी ईशा बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर के ये कुमारियां हमारे सामने उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करेंगे।
चले प्यार प्रभु का लुटाते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो
ईश्वर की, ईश्वर की पहचान बने। प्यार प्रभु का लुटाते चले,
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने। प्यार प्रभु का लुटाते चले,
सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
प्यार प्रभु का लुटाते चले
प्यार प्रभु का लुटाते चले
प्यार प्रभु का लुटाते चले
प्यार प्रभु का लुटाते चले
प्यार प्रभु का लुटाते चले।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं रूहानी फरिश्तों का जिन्होंने इतना सुंदर परफॉर्मेंस हम सबके सामने रखा है। जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए। अभी हम अगली प्रस्तुति देखने के लिए जा रहे हैं। हम किसान हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता भाग्य विधाता है। सलाम है उन किसान भाइयों को जिन्हें हर परिस्थितियों से लड़ना और लड़कर जीतना आता है। किसान वो फौलाद है जो खुद की खुशियों का बलिदान देकर देशवासियों की झोली में खुशियां भर देता है। अपने स्वार्थ को पीछे रख जनहित की भावना रखता है। खुद मिटकर जो जग का पालन करता है। मिट्टी में पैदा होकर वो खुद मिट्टी में मिल जाता है। अरे एक दिन जी कर तो देखो जिंदगी किसान की। मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। छत टपकती है उसके कच्चे घर की। फिर भी वो किसान है जो करता है दुआ बारिश की। ऐसे किसान के जीवन का वर्णन करता हुआ सुंदर डांस लेकर आ रही है मैसाना की कुमारिया रंग शारदा एकेडमी रचना बेन एंड ग्रुप। जोरदार तालियों से इन कुमारियों का हम स्वागत करते हैं।
के महलों से मिलता अपमान है दिल्ली के
किसान हैं हम रे किसान हैं, जिस माटी में बसता मेरा प्राण है उस माटी के हम तो एक किसान हैं। बिटिया की बाली गिरवी रख कर मैं आया ओ, अपनी बिटिया की बाली गिरवी रख कर मैं आया, जो मर के खेत को कोड़े तूने कर्जे में डुबोया। मत कहा करो हम धरती के भगवान हैं, मत कहा करो हम धरती के भगवान हैं, किसान है हम रे किसान है, जिस माटी में बसता मेरा प्राण है उस माटी के हम तो एक किसान है। ये पुरखों के कर्मों का सम्मान है, ये पुरखों के कर्मों का सम्मान है, किसान है हम रे किसान है, जिस माटी में बसता मेरा प्राण है उस माटी के हम तो एक किसान है।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, बहुत सुंदर प्रस्तुति हम सबके सामने इन कुमारियों ने रखी है। इनकी कला का जितना भी वखाण किया जाए बहुत ही कम है। अभी आज हम अगली प्रस्तुति की तरफ जा रहे हैं। ये प्रस्तुति हमें बता रही है हमारे ऋषि और कृषि सनातन संस्कृति और ग्राम स्वराज्य का इतना सुंदर दृश्य, और ये लेकर के आ रहे हैं मैसाना सेवा केंद्र के सभी भाई बहने संस्कृति कला रंगमंच ग्रुप। एक सुंदर नृत्य नाटिका के रूप में इन्होंने हमारी संस्कृति को हमारे सामने रखा है। ये हमें बताने जा रहे हैं कि हमारी सनातन ऋषि कृषि संस्कृति और ग्राम स्वराज्य की झलक, अन्नदाता किसान की जीवन शैली, हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में प्रजापति ने वेदों में स्वराज्य ग्राम व्यवस्था का सुंदर समावेश किया है। साथ साथ अथर्व वेद के अनुसार सुराज्य व्यवस्था को भी इस नाटक में दर्शाया गया है, जिसकी सत्य घटना का भी यहाँ वर्णन है। बहुत मेहनत और परिश्रम से ये हमारे वेदों के एपिसोड्स को ध्यान में रखते हुए सनातन संस्कृति हमारे सामने स्पष्ट हो, तो ये पुरुषार्थ करके इन्होंने इस नाटक में इसे रखा है, जिसे हमें वेदों का वो ज्ञान प्राप्त हो। और साथ साथ अथर्व वेद की पुरातन काल की कहानियों के द्वारा सारांश में इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। गाय का युद्ध, जिसे गोचर में जब गायों को भगाया जाता था तो वहां विष बाला अपना पैर खो करके युद्ध करके गायों को वापस ले आई थी, वेदों की यह सत्य घटना है। फिर राज्य व्यवस्था को भी दर्शाया है, और इस नाटक को और ही रसप्रद बनाने के लिए गुजरात के रंगमंच की शोभा अर्थात भवाई जिसे कहते हैं उसको भी इस नाटक में सम्मिलित किया गया है। गुजरात के सांस्कृतिक वर्षे की अद्भुत कहानी अर्थात भवाई, भवाई की शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई, और संगीत नृत्य अभिनय और संवाद आदि का इस भवाई में समावेश होता है। भवाई को गुजराती नाटकों की गंगोत्री कहा जाता है, जिसने 500 साल से लोक शिक्षण और मनोरंजन का काम किया है। तो यही गुजरात संस्कृति, जिस भवाई के लोकप्रिय पात्र है रंगला और रंगली, तो इस नाटक को भी रंगला और रंगली के द्वारा ही निर्देशन दिया गया है। और साथ साथ इसमें कुछ टॉपिक्स जो समाज के भिन्न भिन्न पहलू पर प्रकाशित किए हैं उन पर कटाक्ष भी किया हुआ है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ, व्यसन मुक्ति, सत्संग साथ साथ में है, स्वरक्षा, सात्विक भोजन, प्रकृति का और धरती माँ का रक्षण कैसे करें, पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, प्रदूषण से विश्व को मुक्त कैसे बनाए, और साथ में ये चाहते हैं कि हम सब प्रतिज्ञाबद्ध हो कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रदूषण नहीं करेंगे, न करने देंगे, और भयानक विनाश को अति से पहले रोकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, और अपनी ये सनातन प्राचीन कृषि परंपरा को अपनाकर भारत की धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो आइए इस जबरदस्त प्रस्तुति को लेकर के महसाना का ये ग्रुप हमारे सामने आ रहा है, जोरदार तालियों से हम इनका उमंग और उत्साह बढ़ाएंगे, और बहुत ध्यान से हमें इस एक एक पात्र को, इस एक एक घटना को सुनना है और देखना है। बहुत बहुत स्वागत है।
जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार, युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।
शांति। जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ चुका है। कहते हैं तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है। मैं हूँ ब्रह्मा की पुत्री, शिव की पौत्री, मुझे ब्रह्मा कुमारी होने का बड़ा गर्व है। जी हाँ, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी शिव प्रिया। आप सभी विराजमान है अरावली आबू पर्वत श्रृंखला के मध्य मनमोहक स्थान ज्ञान सरोवर में। इतने शांत पवित्र प्रांगण में बस आनंद लीजिए हमारे इस रूहानी परिंदों का। मैं भी इस सृष्टि की ही हूँ, हाँ पूरी सृष्टि मेरा घर, उनके सुख में मैं सुखी और उनके दुख में मैं दुखी। ये तो एक बात है, हाँ बाकी अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो मेरे ये कलाकार क्या करेंगे। अरे सुनो सुनो, किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। ओहो समझ गई, कौन आ रहा है? हमारी ऋषि और कृषि परंपरा का आगमन हो रहा है। आइए आइए आइए, पधारिए ऋषिवर। ऋषिवर अपने चंद शब्दों में इस सभा को अपने वेदों का सार समझाइए।
दो तरह की संस्कृतियां अपने यहाँ, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति का संबंध यज्ञ से है, और यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, संविधान अर्पण करते हैं, उसका संबंध ऊपर से है, और कृषि संस्कृति का संबंध धरती से है। हम जो बीज बोते हैं फसल के रूप में, खेत में से वही काटते हैं, तो खेत हमें समृद्धि से जोड़ता है और यज्ञ हमें शांति से जोड़ता है। खेत हमें सुख से जोड़ता है, खेत हमें लोक से जोड़ता है, और यज्ञ हमें परलोक से जोड़ता है। और यही कारण कि यज्ञ से जन्म हुआ श्री राम जी का, अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया। यज्ञ से ही, यज्ञ में ही तो अग्निदेव प्रकट हुए। तो श्री राम जी का जन्म हुआ यज्ञ से, और श्री सीता जी का जन्म हुआ धरती से। और कितना सुंदर संकेत है, ऋषि संस्कृति से श्री राम अवतार लेते हैं और कृषि संस्कृति से श्री सीता जी प्रकट होती हैं।
ऋषिवर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। कृषक जी आप क्या कहना चाहेंगे?
खेत में 1 किलो गेहूं डालता हूं और 100 किलो निकलता है। तो मैंने सवाल अपनी से पूछा कि 1 किलो गेहूं से 100 किलो पैदा करने वाला तो मैं कर्जदार क्यों हूं और 1 किलो गेहूं का 950 ग्राम दलिया बनाने वाला मालदार क्यों हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा सा उत्तर निकल कर आया कि उनके पास कीमत तय करने का अधिकार है, मेरे पास कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। और उस दिन से हमने खेती का स्वरूप बदल दिया और हमने कहा कि अब खेती किसानी के जरिए नहीं करेंगे, अब खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे। और यदि खेती को व्यवसाय के रूप में इस देश का नौजवान स्वीकार लेगा तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ खेती से ज्यादा मुनाफे का कोई बिजनेस नहीं है।
धन्यवाद अन्नदाता। दूसरों को मार कर खाए ये विकृति है, वो अपना खाए आप अपना खाओ ये प्रकृति है, लेकिन दूसरा खा सके आप उसकी चिंता करके खाओ ये संस्कृति है।
धूप है छांव है जलते तेरे पांव है, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है, जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है।
धन की आग कहाँ होती वो जीवन सादा ही जीता है, उसको धीरज कौन बंधाए अपने आंसू खुद पीता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है, वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। बारिश हो या धूप कड़ी हो अपना कर्म वो करता है, जाने कौन घड़ी में मालिक उसकी किस्मत को लिखता है। मिट्टी में पैदा होकर वो खुद मिट्टी नहीं मिल जाता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है।
कर्मशील है दानी है वो बन दतीची तन दे जाता है, वो किसान है खुद मिटकर जो जग का पालन कर जाता है।
स्वतंत्रता के पश्चात कृषि और ग्रामीणों की दयनीय दशा को देखते हुए ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना पर बल दिया। ग्राम स्वराज अर्थात वेदों के प्रमाण सुराज्य संहिता। पूर्व वैदिक काल यानी समय के उस छोर में वैदिक काल के किसी समय में हमारे पूर्वजों की दी हुई धरोहर हमारे वेद आधारित नीति और रीति को झांके।
मेरी दुहिता का ध्यान रखना।
तुम मेरे गोत्र और राष्ट्र का, इंद्र तुम्हारी रक्षा करे।
अम्ब, पिता कहाँ गए हैं?
पिता गविष्टि के लिए गए हैं।
यानी?
गायों को लाने।
किसकी गाय?
गोत्र की।
गोत्र यानी?
हम सभी अपनी गाय कहाँ बांधते हैं?
अपने बाड़े में।
और दूसरे?
वो भी हमारे बाड़े में।
तो जहाँ हम सभी अपनी गाय बांधते हैं उसे गोत्र कहते हैं। इसलिए जिन जिन की गाय एक बाड़े में बंधती है वह एक गोत्र हुआ। कुछ समझी?
पर गायों को लाने के लिए भाला क्यों ले गए हैं?
गायों को लाने के लिए एक युद्ध होता है, इसलिए गायों के लिए युद्ध को गविष्टि कहते हैं।
कौन ले गया गायों को?
चोर।
तुम कभी गई हो गायों को ढूंढने?
सो जाओ।
प्रतीक्षा नहीं करोगे?
अम्ब, जब बात मेरी गायों की हो, मेरे गोत्र मेरे ग्राम की हो, मेरे खेत और खलियान की हो, तो मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही वरुण हूँ। अपने गोत्र के लिए मरने का अधिकार मेरा है।
जा, अपनी गायों को ले आ।
सभापति, हम जा रहे हैं।
हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम अपनी बेटियों को अकेले नहीं जाने देंगे।
आप सभी ग्राम की रक्षा करें, अपने गोत्र की रक्षा करें। शत्रु कभी भी घात कर सकता है, हमें रथों से भी तेज दौड़ना पड़ सकता है। उनके भाले और तीर हमारे मजबूत वक्ष झेल पाएंगे। हमने जन्म ही इसी दिन के लिए लिया था कि हम अपने कुल गोत्र ग्राम और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। हम सभी गविष्टि के लिए अपना नायक चुने।
उसकी क्या जरूरत है विश्वला? विश्वला, तुमने रथों की दौड़ जीती है, तुम युद्ध में सारथी भी रही हो, तुम एक योद्धा हो, तुम ही हमारा नेतृत्व करो।
क्या आप सभी एकमत हैं?
हाँ।
तो गोत्र याद रखें, हम गोचर से भगाई हुई हमारी गायों को खोजने के लिए जा रहे हैं, किसी दूसरे गोत्र और ग्राम को उजाड़ने या उनकी गायों को लूटने नहीं। हम अपने शत्रुओं की पत्नी बच्चों और बूढ़ों पर आक्रमण नहीं करेंगे। प्रजापति हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे,
इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे।
ये तो गाय के खुरों के निशान है।
वैदिक काल से आगे और फिर उसमें ही चलेंगे विजयनगर के गांव में, जहां एक आचार्य अपने बच्चों को अथर्व वेद या वेदों का भाष्य समझाएंगे, बच्चे प्रश्न पूछेंगे और आचार्य सायण्य अपनी वार्ता बच्चों को सुसंस्कृत करने के लिए देंगे।
अभी तक सोए नहीं स्वामी?
मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ आचार्य। ऋषि जिस विश्वला का वर्णन कर रहा है वह स्त्री है याश्व।
इसका उत्तर तो यास दे सकते थे या विजयनगर में हमारे प्रधानमंत्री आचार्य साया।
नमस्कार। नमस्कार।
अरे सायन, युद्ध तो था नहीं, फिर तलवार लेकर कहाँ गया था?
चरण स्पर्श आचार्य।
आयुष्मान भव।
योद्धा हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ।
तू तो ज्ञान का योद्धा है, तीन वेदों पर भाष्य लिख चुका है। सौभाग्यशाली है विजयनगर की प्रजा जो उसे पहला प्रधानमंत्री माधव विद्यारायण जैसा सन्यासी मिला, और दूसरा प्रधानमंत्री वेदों का भाष्यकार और योद्धा सायणाचार्य मिला। अरे तो भले आदमी, कोई जरूरी है कि प्रधानमंत्री ही सारा बोझा ढोए? सैनिकों को भी तो बोझा दिया जा सकता था।
ज्ञान बोझा नहीं आचार्य, यही तो मेरा आभूषण है, ये तो मैं ही उठाऊंगा।
वाह, सीने पर शास्त्र और कमर में शस्त्र, तेरा नाम तो शस्त्र सायण होना चाहिए, परशुराम की तरह।
मेरे सिर पर हाथ रखिए आचार्य।
सदैव प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न।
प्रश्न,
विश्वला कौन है?
मेरी अल्प बुद्धि में विश्वला स्त्री योद्धा है जिसने खेला युद्ध में अपना पैर खोया, पर मेरा मत अंतिम नहीं है। वेदों में और छलांग लगाओ, शायद नया अर्थ मिले।
आचार्य शायन के भाष्य पर टिप्पणी नहीं हो सकती आचार्य?
शास्त्रों की नई व्याख्या करना हमारी परंपरा है बटुक, कोई ऐसा ऋषि नहीं जिसका वचन अंतिम प्रमाण माना जा सके, इसीलिए प्रश्न करो, भारत का गौरव बढ़ाओ।
अपने आचार्य के लिए ले जाओ।
ब्रह्मचारी आशीर्वाद।
अन्नदाता सुखी भव।
आपको भी ब्रह्मचारियों से संवाद बढ़ाने में आनंद आता है, आप चाहते तो ब्रह्मचारी को वेदों में छलांग लगाने के लिए नहीं कहते, हाथ पकड़कर पार करा देते।
ये बटुक वेदों में छलांग लगाएगा, मैं चाहता हूँ ऐसे ब्रह्मचारी बार बार आए, इन्हीं से तो मैं हर बार कुछ नया सीखते और दोहराते रहता हूँ।
विजयनगर साम्राज्य में एक बात और प्रसिद्ध है स्वामी, कि सायण पेड़ है जो हमेशा ब्रह्मचारियों को फल देता है, सायण खेत है जो हमेशा ब्रह्मचारियों को अन्न देता है, ब्रह्मचारियों के लिए सायण कामधेनु और कल्प वृक्ष है।
गणानां त्वगणपति गुं भवामहे, कविं कवीनामुपम श्रवस्तमम्। गणानां त्वगणपति गुं भवामहे, कविं कवीनामुपम श्रवस्तमम्।
समिति और सभा, प्रजापति की दोनों पुत्रियां मेरी सहायता करें, जिनसे भी मेरी भेंट हो मुझे सहयोग करें। हे पितृगण,
मैं और यहाँ एकत्रित सभी सहमति के शब्द को,
सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं और उन्हीं के द्वारा प्रजापति ने हमें एक शासन व्यवस्था दी जिसमें राजा भी प्रजा के अधीन है। यहाँ अपना मत रखने के लिए हर सभासद और सभापति स्वतंत्र है। राष्ट्र का प्रशासन करना और राजा को दिशा देना सभा का काम है, पर हमारी सभा इतनी नीरस भी नहीं है, ये हमारी सरस उत्सव भूमि है। यहाँ हम नाचते हैं, गाते हैं और मनोरंजन के लिए। आपने ये राष्ट्र मुझे इसलिए दिया ताकि मैं खेती और किसानों का भला कर सकूं। आपने ये राष्ट्र मुझे इसलिए दिया ताकि मैं किसानों को संपन्न कर सकूं। इसीलिए मैंने हथियारों के बजाय हलों पर ज्यादा ध्यान दिया। यदि मैं प्रजा के प्रति असावधानी करूं, तो समिति मुझे पद भ्रष्ट करने में तनिक भी देर ना करे। इसलिए मैं सभा से पूछता हूं, क्या मैंने प्रजा के विरोध में कोई काम किया है?
नहीं।
क्या शासन के प्रतिनिधि कुलपा हमारे गृहपतियों पर शासन करते हैं? कुलधर्म का पालन करवाते हैं? कुलपा, आप मेरे और गृहपतियों के बीच कड़ी है, इसलिए आपको राजन भी कहते हैं। इस सूत्र और पद का सम्मान करना।
हाँ राजा।
ब्राजपति, क्या मेरे प्रतिनिधि ब्राजपति आपके कुलों की संपत्ति की रक्षा करते हैं? ग्रामणी, क्या कुलपा और ब्राजपति आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं?
हाँ राजा।
ग्रामणी, आपको मनु भी कहते हैं, क्योंकि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ग्रामवासियों से पिता की तरह व्यवहार करें।
हाँ राजा।
बूढ़े पिता की तरह किचकिच तो नहीं करते?
सभापति, क्या ग्रामवासी, गृहपति, कुलपा, व्राजपति, ग्रामणी आपके संरक्षण में हैं?
हाँ राजा।
सभावती,
हाँ राजा।
क्या ग्राम में कन्याओं का उपनयन होता है?
हाँ राजा।
क्या वे शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करती हैं?
हाँ राजा।
क्या परिवार में पत्नी सम्रागी है?
अधिकतर परिवारों में तो महिलाओं का ही शासन चलता है राजा।
क्या स्त्रियों को न्याय मिलता है?
हाँ राजा।
सभा,
कभी
कभी मैं सोचता हूँ कि प्रजापति ने सभा और समिति को अपनी बेटियां क्यों कहा? शायद इसलिए कि जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। जहां बेटियों के साथ अन्याय होता है उस राष्ट्र को कभी सम्मान नहीं मिल सकता। जहां बेटियों का अपमान किया जाता है वहां देवता भी आहुति ग्रहण नहीं करते।
समिति के सदस्य विषय, मेरे स्वरों की कड़वाहट के लिए मुझे क्षमा करें, पर कड़वा सच यही है, जब से आर्य सुबल को समिति ने अपना राजा चुना है तब से हमारे भालों की धार भोथरी हो रही है, तब से हमारे तीर तरकस में ही पड़े हैं, तब से हमने एक भी युद्ध नहीं किया। दस्युओं ने विश्वला के पैर काट दिए पर हमने दस्युओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की। राजपति और कुलुपा के शत्रुओं ने हत्या कर दी पर हमने युद्ध का आह्वान नहीं किया। हमारे गोत्र पर आक्रमण हो रहे हैं पर हम युद्ध के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में सुदास हम पर हंस रहे होंगे जिन्होंने 10 राजाओं के साथ अकेले ही युद्ध किया था। हमारे पुरखों ने समिति को शाश्वत कहा, अमर कहा, और यदि हम ऐसे ही युद्ध से विमुख रहेंगे तो कोई समिति अमर नहीं रहेगी।
विषय बिहुल, पुरखों ने समिति की परंपरा को अमर कहा है, व्यक्ति को नहीं।
विषय, बिहुल को समिति में अपनी बात रखने का अधिकार है।
क्या मैं समिति को ये याद दिलाऊं कि विदत में युद्ध में जीते गए गोधन, अश्वधन, पशुधन, हिरण्य, मणिमुक्ता और दास दासियों का बंटवारा होता था। हमारी स्त्रियां विदत में शामिल होती थीं और पराक्रम से पाए गए धन को पाकर प्रसन्न होती थीं। और जब से आर्य सुबल हमारे राजा हुए हैं एक बार भी विदत का आयोजन नहीं हुआ। मैं समिति का आह्वान कर रहा हूँ, दस्यु हमारी ओर आ ही रहे।
लगातार युद्ध के कारण लोग भयभीत न हो इसीलिए हमने हर गांव में रक्षकों को नियुक्त किया है। आपने मुझे प्रधान गोप बनाया ताकि मैं अपने जन की रक्षा कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जन धन का उपभोग करूं। मैं अपने जन, अपने गांव, अपने गोत्र, अपने गण की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हूं, पर दूसरों के धन का, उनकी गायों का, उनकी स्त्रियों का, उनकी संपत्ति का, उनके स्वर्ण, उनके हिरण्य का, उनके हलों, उनके रथों का, उनके बैलों, उनके बीजों का, उनके अन्न और खेती के साधनों का अपहरण करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस अश्वमेध के लिए तैयार हूं जो राष्ट्र को सुशासन दे। मैं अन्न और जल के लिए वाजपेयी यज्ञ करने के लिए तैयार हूं, पर साथ ही नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए श्रम का यज्ञ भी करूंगा। हम गांव गांव में कुएं खुदवाएं, जलाशय बनवाएं, ताकि हमारे खेत और खलियान प्यासे न रहें। क्यों कहा था हमारे पूर्वजों ने कि जो अकेला भोजन करता है वो पाप खाता है? इसीलिए कि जिसके पास अन्न नहीं उसे अन्न देना भी यज्ञ है। क्यों हम दूसरे के धन पर दृष्टि डालें, दूसरों का अनाज लूटने के बजाय हम अपनी भूमि को सींचे? जैसे 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल से, सीर से हमारे पुरखों ने धरती पर फसल लहलाई थी। पणियों की गाय लूटने के बजाय हम गोपालन और पशुपालन करें, उनकी वृद्धि कर समृद्धि पाएं। पुरखों से मैंने सुना था कि महाराज मनु ने अन्न और जमा संपत्ति के 10वें भाग और स्वर्ण और पशुधन के 50वें भाग देने की शर्त पे प्रजापालन का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था।
आचार्य,
मनु था
और ये कह रहा है कि पहला राजा प्रथु था, तो मनु से पहले कौन था और कर कितना था, उत्पन्न का छठा हिस्सा या दसवां?
कहीं बैठकर पानी पिए?
हाँ, 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 हाँ।
चलो। प्राचीन काल में न राजा था न दंड, लोग धर्म का पालन कर एक दूसरे की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मूल्यों का पतन हुआ और मनुष्य लालची, स्वार्थी और दुष्ट होता गया। ताकतवर कमजोर को मारने लगा। चारों ओर मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। तब प्रजापति ने 100,000 अध्याय की नीति शास्त्री की रचना की, जिसमें राज्य, राजा, राष्ट्र और प्रशासन का वर्णन किया। इसके बाद प्रजापति ने विराज को पहला राजा बनाया। वो वेन का पुत्र पृथु था, जिसके समय में राजा शब्द पहली बार अस्तित्व में आया। ये कथा महाभारत में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही।
तो फिर मनु कहाँ से आया?
ऐसी ही एक और कथा महाभारत में आती है, जब मत्स्य न्याय के कारण अराजकता फैलने लगी। राजा के बिना लोग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। तब लोगों को राजा और राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने शांति से रहने का प्रण लिया और सभी प्रजापति के पास गए और उन्हें एक राजा नियुक्त करने को कहा जो अराजकता समाप्त कर सके। प्रजापति ने मनु को उनका राजा नियुक्त किया, पर मनु ने राजा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। लेकिन बहुत मनाने और अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा और अपने पशुधन का 50वां हिस्सा देने का वचन देने पर मनु मान गए।
अब समझ में आया कि करना मूल्य पर राजा क्यों रुट जाते थे।
हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हसी सारे तेरे नाल, ओए पकड़ी संभाल जट्टा, पकड़ी संभाल।
ग्राम स्वराज अर्थात ग्रामीण आत्मनिर्भरता, स्वशासन, समृद्धि और खुशहाली, जो सनातन कृषि संस्कृति को पुनः अपनाने से ही संभव है। सनातन कृषि संस्कृति भारतीय जीवन शैली का मूल आधार रही है, जिसने हजारों वर्षों तक भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए रखा। हमारे सदियों पुराने इस विरासत को आत्मसात करे, पूर्वजों का ऋण उतारे।
नमस्कार, मैं हूँ सूत्रधार, मेरे पात्र और आपके बीच का एक सेतु। देखो देखो कौन आ रहा है। हाँ, वो लगता तो विदूषक है। एक बात बताओ, ये विदूषक छिपे नहीं रह सकते, पहचान नहीं जाते वो हमारे नाटक के हो व संसार के हो। ए विदूषक, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सभी आ गए हैं। आसपास दूर दूर सभी को बुलाऊंगी, पूरी दुनिया को बुलाऊंगी। तन कई बांधो ना भाई ना। मैं इन सभी को क्यों बुला रही हूँ पता है तेरे को? नहीं पता। तो पछी इसको देखो, इसको मिलने। अरे ये है क्या? आ पंखी, पंखी। अच्छे घोड़ो, अक्कल साथे तालमेल छे, ये है ना इंसान है, अनु मानस पण भाई। वाह, तो फिर हाँ। ये कैसा विचित्र मनुष्य है, इस जमाने में थोड़ी तो लॉजिक जैसी बात कर। थोड़े समय के बाद इस धरती पर कुछ ऐसे ही जीव देखने को मिलेंगे, बड़े विचित्र। हाँ, ये है ना मॉडल पीस है। अभी भी नहीं समझा? रुक जा। अरे ओ रंगला, जल्दी आओ जल्दी। अरे ओ रंगला, आओ जल्दी, आओ जल्दी रंगला, जल्दी आओ।
आवियो रंगलो, आवियो रंगलो, भस्म जानो रंग लई रंगीलो रंगलो, आवियो भस्म जानो रंग लई रंगीलो रंगलो, आवियो सौना मन्ना रंजन काजे वे सजीने, आवियो सौना मन्ना रंजन काजे वे सजीने, आवियो रंगलो चटपट बरतो, आवियो रंगलो चटपट बरतो, आवियो डर।
अकेली छोड़कर आ गया क्यों?
अरे रे, तू अकेली रह गई थी?
जा,
अरे अ, अ, अरे अरे मैं तुझे ही लेने आ रहा था। पूछ इन दोनों को, जो हाँ पाड़ी, जो हाँ पाड़ी। रंगली रंगली तू हम रिसा ही ना जा। रंगली तुझ के तारा वगैरह वेश करू
पत्यू। हवे हूँ बोलू।
बोलो ने त्यारे, आपको किसने रोका?
विदूषक के हाथ में देखा, देखा उसके हाथ में।
अल्या रंगला, देखा क्या है ये?
अरे हम जानू रे, हम जानू।
तो समझाओ इन लोगों को और मुझे भी।
ए रंगली आमा, समझाओ तो नहीं समझाओ।
नहीं आऊ जा।
ए रंगली आमा आओ ने।
दलडा ने नहीं रानी, वासना तुझे आजे रानी। दलडू कांपे डरबस लागे, मात ने जोखम जानी। दलडू कांपे डरबस लागे, मात ने जोखम जानी। रंगली मात ने जोखम जानी, रंगली मात ने जोखम जानी।
हाय हाय, मात ने जोखम है रंगला? कौनी माने, तारी माने के मारी माने?
अरे क्यों एक ही ट्रैक में सोच रही है? क्या जो जन्म देती है उसे ही माँ कहते हैं?
हाँ तो माँ ते माँ, बीजा बदा वगड़ा ना वा।
हाँ तारी बात साची रंगली, जो जन्म देती है उसी को ही माँ कहते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पण आखी सृष्टि ने पोताने खोड़े उछेरनारी धरती माँ ने माँ कहवाये के नहीं? बोल तो जननी जन्म भूमिश्च।
हाँ हो, इस धरती माता को किसका खतरा? आ तारा जेवा छूटा छवाया धरती ऊपर रखड़ता होए एनु जोखम खरू हो।
ए रंगली, ए रंगली, मेरी मजाक मत उड़ाओ, ये बोल दिया तुझको। रंगली बात थोड़ी सीरियस है, गंभीर हो जा। ए रंगली सुन, हम अपने जीवन में समय के मुताबिक जीते हैं तो जीवन कितना व्यवस्थित होता है। बैठ बैठ, मैं तेरे को समझाता हूँ। बैठ, सुबह को उठना समय सर, ब्रश करना समय सर, नाश्ता करना समय सर, ऑफिस जाना समय सर, दोपहर को खाना समय सर, शाम को वापस भी आना समय सर।
बस समय सर, समझ गई। अब आगे?
हाँ बस 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 बस, समझी गई ना रंगली? ऐसे ही नीति नियम सृष्टि के होते है कि नहीं
है?
ना समझी, ना समझी, समझाओ।
जो मेरे ताप वधे ऋतुओनो व्याप घटे, जो मेरे ताप वधे ऋतुओनो व्याप घटे। सृष्टि नो लय जाने आज खोरवाय छे, सृष्टि नो लय जाने आज खोरवाय छे। हिमखंडो पिगड़ी ने दरिया मा जाय भळी, हिमखंडो पिगड़ी ने दरिया मा जाय भळी। कालनिया धरती डूबेली देखाय छे, कालनिया धरती डूबेली देखाय छे, डूबेली देखाय।
हाय हाय रंगला, आ धरती डूबी जैसे, आपने बधा डूबी जैसो। हाय हाय, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हा हा हा, अब क्या होगा?
ये पोक नामुक, पोक नामुक। अरे रंगली सांभर सांभर, अगर वातावरण में बढ़ती हुई गर्मी को रोका नहीं गया ना तो हम सब डूब जाएंगे।
अला रंगला, आ गर्मी ने हूँ कहवा जाऊ छू? ए गर्मी 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 वद, ए गर्मी 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 ना वद, गर्मी अली गर्मी, उभी तो रे ताण शू।
अरे मेरी बोली रंगली, अगर तेरे या मेरे कहने से ये गर्मी घटती और बढ़ती तो इस दुनिया का क्या हाल होता तुझे मालूम है?
तब इस वातावरण में गर्मी बढ़ती कैसे है?
समझाओ रंगली समझाओ, आओ तने समझाओ।
कारखाना वावुवाने वृक्षो कपाय छे, कारखाना वावुवाने वृक्षो कपाय छे। सृष्टि नो केवु निकंदन कढाय छे, सृष्टि नो केवु निकंदन कढाय छे। पर्यावरण आखु आ केवु डोळाय छे, पर्यावरण आखु आ केवु डोळाय छे। के धरती ने माथे तो खतरो तोड़ाय, धरती ने माथे तो खतरो तोड़ाय, धरती ने माथे तो
अच्छे। तेथी कौन हालियो आवे छे? ए देख 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 रंगली, ये कौन आ रहा है?
पता नहीं कौन छे।
अरे आ दूर थी खास्तो खास्तो कौन आवे छे? अरे ये तो अपने गांव का भोला है।
मोठामा मावो होठमा बीड़ी उत्ती दारू छोड़ो, ओरो आवे तो, ओरो आवे तो लागे हाट पिंजर, जाने बगलो धोड़ो भाई, जाने बगलो धोड़ो।
अरे देखो तो सही, व्यसन ने इसकी क्या हालत कर दी है।
रंगला ये सब शराब क्यों पीते हैं?
मौज मस्ती के लिए। इस पापी ने अपनी जवानी को शराब और व्यभिचार में बर्बाद कर दिया है। शराब के बिना उसे चैन भी नहीं पड़ता और शराब पीने के पैसे के लिए अपने बीवी और बच्चों को भी मारता था। और दारू पीने के पैसे के लिए उसने अपने घर तक को बेच दिया और अपने परिवार को रस्ते पे ला दिया।
अरे ओ भाई, माचिस है माचिस।
देख रंगली, जिसने व्यसन की वजह से अपने पूरे जीवन को आग लगा दी है, उसको अभी भी माचिस चाहिए। ये इंसान अपने बचपन से ही गुटखा खाते आ रहा है।
ये गुटखा कौन सी बला है?
ये वो बला है जिसने भारतवर्ष के लाखों युवाओं के जीवन का सत्यानाश कर दिया है। इस व्यसन ने तो कैसी दुर्दशा कर दी है। सुधरो सुधरो अवे सुधरो।
हमारे गांव के लोगों ने जब से ये सादा और सात्विक भोजन छोड़ा है ना, तब से ये शरीर रोगों का घर बन चुका है रंगला।
अरे रंगली, हमारे घर के पीछे जो वो हरिया रहता है ना, वो तो रोज होटल में खाने जाता है। वो बोलता है कि वहाँ का स्वाद बहुत अच्छा होता है। लगता है वो ही आ रहा है।
पिज्जा बर्गर पाव भाजी ने पास्ता ए खातो, तीखू तमतम तू तड़ेलू भोजन नाश्ता खातो, पानी पूरी भेल पूरी खेती रगड़ा खातो, शरीर तिरे तो तगड़ो भाई पेट तिरे तो तगड़ो।
तारा खावाना चटका लावशे रोगना फटका। मारू कहियू मान, आवा तेवा फास्ट फूड न खा, चेती जा, सादो खोराक लेवो ने नर्वो कोठो राखवो।
हाय रे, अला ये क्या कर रहा है? ए लीला गंगा जमुना, जल्दी आए जल्दी आए, आया आए जल्दी। अला ये क्या कर रहा है तू?
क्या कर रहा हूँ मतलब? पेड़ काट रहा हूँ, दिखता नहीं है?
दिखता है हाँ, बंद कर अभी इसी वक्त, बंद कर। रुक जा, अगर पेड़ को जरा सी भी कुलाड़ी लगाई ना तो दिखने जैसी होगी। हाँ,
इस एरिया के सारे पेड़ काटूंगा। क्या कर लेगी, क्या कर लेगी बोल?
करने में तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हिंसा करना हमारे संस्कार में नहीं है।
लालची इंसान दो पैसे के लिए पर्यावरण का निकंदन निकाल रहा है।
इस पूरे एरिया को साफ करके ना फैक्ट्री बनानी होगी इसको, औद्योगिक विकास के नाम पे।
औद्योगिक नहीं, प्रदूषण का विकास करने के लिए काट रहा है।
हाँ, प्रदूषण का विकास।
पतियू चलो भागो, मुझे यहाँ शांति से काम करने दो। चलो निकलो, काम करने दो।
हे भगवान, इसको तो समझाना माना पत्थर पर पानी। उभोरे, अपनी कुल्हाड़ी दूर रखना, ये लास्ट बार वार्निंग है। पता है एक पेड़ को उगने में कितना टाइम लगता है? जब वो घटादार बनता है तभी वो पर्यावरण की रक्षा करने के लायक बनता है।
ले, हमने तो खबर अद नती। ले हो, जा।
आ क्यारनो लवारो करिए छे, तेरे भेजे में उतरता नहीं है क्या?
ये पेड़ अगर धरती पर से कम हो जाएंगे ना तो बारिश भी नहीं होगी। यहाँ किसको पड़ी है, वातावरण का जो होना हो सो हो। लकड़ी बेचकर पैसे मिले तो बस,
फैक्ट्री बना के लाखों कमाने हैं बस।
ये पेड़ तो वातावरण को ऑक्सीजन देता है, पर हमको कहाँ चाहिए ऑक्सीजन?
अरे भाई, हम जो पेड़ काट रहे हैं वो पहले से ही मरे पड़े हैं।
अरे है, क्या स्वाइन फ्लू हुआ है?
अरे नहीं, कोरोना हुआ है।
अरे ये पेड़ मरने पड़े हैं, इनकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए या इन्हें काटना चाहिए?
अरे इतने सारे पेड़ है, इन्हें नहीं काटेंगे ना तो किसी के सिर पे गिर पड़ेंगे।
अरे ये पेड़ कम हो गए ना तो दवाइयाँ और औषधियाँ मिलनी बंद हो जाएंगी, पता है तेरे को?
अरे हाँ भाई हाँ। अबे
अरे बेवकूफ, एक पेड़ काटता है तो तेरे में 10 पेड़ उगाने की क्षमता है। इन पेड़ों को प्रयत्न पूर्वक अगर बचाया नहीं गया तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा।
अगर ये सब समय से करे तो फिर पछताए काहे को, जब चिड़िया चुग गई खेत।
तुम्हारी बात सही, समझता हूँ सब कुछ। ये इंसान बढ़ रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए कि नहीं? इसके लिए तो पेड़ काटने पड़ते हैं।
बात तो सही है हाँ, ये जैसे जैसे बस्ती बढ़ रही है तो उसको कुदरती संसाधन भी तो ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। खाने को भी चाहिए और पीने को भी चाहिए, गैस, तेल, पेट्रोल सब कुछ चाहिए। तो ये बस्ती का ज्यादा बढ़ना ही सभी समस्याओं का मूल कारण है।
ये धरती और पर्यावरण का शोषण किया है इन इंसानों ने। अरे पृथ्वी, वनस्पति, ओजोन वायु, इन सभी को पुनः प्राप्त संसाधन कहते हैं। अरे इन्हें बार बार कितना भी उपयोग करे तभी भी खत्म नहीं होते।
अरे इतना तो सोचो, इन इंसानों ने इन संसाधनों का कितना दुरुपयोग कर दिया। अब तो वो भी पूरे होने को आए तो समझो वाला, वधु ने वधु वृक्षों वावो, तमने जे जीवन आपे छे एनू जीवन छीनवी ने तमे नगुणा बनशो। तमे ज पोतानी मानव जात ना दुश्मन बनो छो। इतना स्वार्थ अच्छा नहीं है।
आपकी बात सही है, पहले मैं 10 पेड़ लगाऊंगा, उसके बाद ही मेरी कुलाड़ी कोई पेड़ काटेगी। बहन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और अपने पर्यावरण को बचाएंगे।
सौना मन्ना रंजन काटे वेंट जी ने आवो, रंगलो चटपट बरतो आवो, रंगलो चटपट बरतो आवो। डर
लेकिन ये स्वार्थी मानव जात खुद की बढ़ी हुई बस्ती को बसाने और औद्योगिक विकास करने के लिए जंगल काटते हैं, पेड़ काटते हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं।
अरे रंगला, ये सब तो बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है ना?
हाँ सिखाते हैं ना, लेकिन उसको तो सिर्फ रट रट के परीक्षा में लिख देने का, जीवन में उतरने का कहाँ सिखाते हैं। रंगली, अगर हम शुरुआत करेंगे ना तो थोड़े समय के बाद हमारे पीछे पीछे बहुत सारा बड़ा समुदाय पर्यावरण की रक्षा करता हुआ दिखाई देगा।
हाँ हाची बात रंगला, एकदम हाची बात। ए रंगला एक बात कहूँ, मने एक गीत गावानू मन थाय छे, गाओ।
हाते गाने पण चुप, तू मंडी जे छोड़े वृक्ष वावो।
ए तू चुप, मैं कहीं खोटू गायो?
हाँ हाँ रंगली, तेरी बात सोला आने सच है, लेकिन ये स्वार्थी मनुष्य अपने भौतिक सुखों के लिए इस धरती का निकंदन निकाल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका ही भविष्य खतरे में है।
हाँ अल्या एमा पड़ से वा देवा से।
इसीलिए कहते हैं कि
जे डार पर बैठो मानस एज डार ने कापे छे,
जे डार पर बैठो मानस एज डार ने कापे छे,
जे डार पर बैठो मानस एज डार ने कापे छे,
जे डार पर बैठो मानस एज डार ने कापे छे। सुते ने रंजाई मानस भौतिक सुख ने मापे छे, सुते ने रंजाई मानस भौतिक सुख ने मापे छे।
कुदरत ने छन छेड़े मानव जोखम ने सत्कारे छे, छेड़े मानव जोखम ने सत्कारे छे, बैठो
मानस। रंगली, ओ रंगली कहाँ गई? सुनती नहीं हो?
हाय रंगला, हूँ तो अवे तारा थी कंटाली हो। मैं नाराज हूँ, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है।
अरे रंगली, बहुत हुआ, अब बस कर, बैठ के बता क्या हुआ है तुझे।
मैं रोज अपने मोहल्ले की सफाई करती हूँ, फिर भी लोग रोज कचरा डाल देते हैं। रंगला, तू सब लोगों को समझा दे, तू आसपास के लोगों को समझा दे। हाँ फिर तू अकेला रहना, हूँ तो आ चाली मारा पियर।
अली ए, उभी रे, कहाँ चली? मैं समझाऊंगा ना सबको। देखो भाइयों और बहनों, जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। हम अपने शरीर को स्वच्छ रखे, अपने कपड़े को स्वच्छ रखे, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखे, अपने गांव को स्वच्छ रखे, लोगों में आनंद आ जाए, इसीलिए हमें स्वच्छता रखनी जरूरी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी स्वच्छता के अग्रही थे। हमारी भारत माता हमारी पूजनीय माँ है, तो उनको तो स्वच्छ रखना चाहिए ना। इसीलिए मन को भी स्वच्छ रखो और देश को भी स्वच्छ रखो। भारत सरकार की ओर से ब्रह्मा कुमारी के आदरणीय दादी जी को स्वच्छता के एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है, और इनकी स्वच्छता का तो क्या कहना। आ हा हा हा, देख रंगली, अब मैंने सबको समझा दिया है, अब तो तू अपने मायके नहीं जाएगी ना।
अब मैं खुश हूँ रंगला, हवे हूँ तने छोड़ी ने क्या ही नहीं जाऊँ। हाँ
हाश, हवे निराश थई, तमे बधाई मने बचाई लीधो। हो
आजकल तो हूँ बहुत खुश रहू छू रंगला।
केम 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 केम?
मैं तो ओम शांति के सत्संग में जाती हूँ रंगला, और वहाँ मुझे बहुत आनंद मिलता है, और धीरे धीरे मेरे संस्कार भी बहुत अच्छे होने लगे
हैं। साचो सत्संगीए जानू मान मर्यादा वालो, पत्नी ने आपे मान गरडाने आपे सम्मान, नाले कदी कारू नाणू करे न छोटा काम।
अरे रंगला, ये पशु पंछी से याद आया, पेड़ काट के इन्हें बेघर कर देते हैं, इन पर दया नहीं आती है जरा सी भी। बेचारे ये मूक पंछी मनुष्यों को कुछ कह भी नहीं सकते।
इससे तो बहुत सारे पशु पंछियों की जाति लुप्त हो रही है।
रंगला, कुछ समय के बाद अगर ये जो हाथी शेर घोड़ा अगर केवल चित्रों में ही दिखे ना, तो कोई भी नई बात नहीं। हा
ए रंगला, हमने वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं देखा था, वो क्या था? हाँ, डायनामाइट। डायनामाइट
है?
अरे वो डायनासोर बोल रही है।
अरे ये तो डायनासोर बोल रही है।
अरे रंगली, ये तेरे जैसा मीठा मीठा बोलने वाले पंछी भी आजकल कहाँ दिखते हैं, है ना? और ये शहरीकरण ने तो प्रकृति की जैसे वाट लगा दी है। पहले तो आम के पेड़ पर कोयल कितना मीठा मीठा बोलती थी।
हाँ, पहले तो कोयल कितना मीठा मीठा बोलती थी, बताओ बताओ।
कूके 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 कोयलिया कूके।
अरे वो काबर, बंद था, चुप कर। कोयल इतना बेसुरा गाती थी क्या? ये तो आजे मारो जरा आवाज खराब छे ने, इतले।
सच्ची बात हा?
ए रंगला, आ चकली, काबर, पोपट, मैना, आ बता क्या गया है?
बहुत ही करुण बात है रंगली, और उसकी बहुत ही करुण वजह। क्या बताऊं मैं तुझे रंगली, कुहू कुहू ने टेहू टेहू ना मीठा वाही वाता था, गुगू चीची करता करता पंखीड़ा अही गाता था, मीठा कलरव शांत बनी सन्नाटामा ठलवाता था, ज्या मानस केरी जात वड़े वृक्ष बदे कपाता था, वृक्ष बदे कपाता था, वृक्ष बदे कपाता था।
बस कर रंगला, बस कर, मने तो रड़वू आवे छे। आ पंखी बिचारा क्या आश्रो लेशे है?
ए रंगला, तेरे को पता है दुनिया में एक अफवाह फैली हुई है। अफवाह? कौन सी अफवाह?
अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रही है। चुप कर, वो रोएगी।
अरे मैं डरा नहीं रही हूँ, ये कोई सुना अनसुना करने की बात नहीं है, सच्ची बताती हूँ। क्या है बताओ बताओ, कोई मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा है? दुनिया का अंत रंगली, दुनिया का अंत।
दुनिया नो अंत रंगली, दुनिया नो अंत।
रोना बंद कर मेरी माँ, तू डूबेगी नहीं तो तेरी बेटी डूबेगी, नहीं तो उसकी बेटी डूबेगी। देखना, दुनिया का अंत जरूर होगा, सब डूब के मरेंगे, देख लेना।
हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं जब पानी के बिना मरेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पृथ्वी पर से मीठा पानी लुप्त हो जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि पानी बचाओ पानी बचाओ, और इसीलिए मैं कहता हूँ
टीपे टीपे भरो सरोवर जड़ जीवन बेरफ्ता नहीं। टीपे टीपे भरो सरोवर जड़ जीवन बेरफ्ता नहीं। जल बिंदु अमृत नु टीपू शाणा हो सब गया से गई। जल बिंदु अमृत नु टीपू शाणा हो सब गया से गई। टीपे टीपे भरो सरोवर जड़ जीवन बेरफ्ता नहीं।
टीपे टीपे भरो सरोवर जड़ जीवन बेरफ्ता नहीं।
रंगला सच्ची बताओ, इन सब बातों का एक ही मतलब निकलता है।
अरे वाह, मतलब निकाला रंगली ने।
हाँ तो वड़ी, कब तक बुद्धू समझते रहेंगे मुझे। इंसान को सच्चे अर्थ में शिक्षित होने की आवश्यकता है, मनुष्य को अपनी फर्ज निभाने की जरूरत है।
अरे हाँ रंगली, वाह वाह, तुझे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है।
अरे हाँ रंगला, अगर सभी अपना अपना फर्ज निभाए तो पूरी दुनिया हरी भरी हो जाए।
हाँ,
वातावरण में गर्मी भी कम हो जाए।
अरे हाँ, पशु पंछी भी अभयारण्यों में मुक्त बनकर विचरण करें, और ये नदियाँ भी हरी भरी बनकर के बहती रहें।
अरे हाँ, समुद्र की सतह भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि बर्फ पिघलेगा ही नहीं।
अने पछी तो रंगला, लीला लेर
बोला मोटा, फिर ये सब करेगा कौन?
अरे कौन एटले? हूँ, तू, आप सूत्रधार, विदूषक अने आ बधा। खरू ने, क्या हम लोग समझदार नहीं है? हम अपने ही बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे?
ए रंगला, हम जो इतने सारे इकट्ठे हुए हैं ना, तो पछी लेवड़ाई दे ना।
शू लेवड़ाई दऊ?
पेली
एटले शू?
अरे पेली प्रतिज्ञा।
ओ प्रतिज्ञा, भाई लेवी छे प्रतिज्ञा?
अने पूछे छे शू? लेवड़ाई दे प्रतिज्ञा।
अल्ला बोगा शू पाड़े, लेवड़ाई दऊ। चलो भाई लेवड़ाई दिए प्रतिज्ञा। हम सभी धरती की संतान है। प्रकृति की साक्षी में प्रतिज्ञा लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना उसको अपना फर्ज समझेंगे।
अगर कोई प्रदूषण करेगा तो उसको रोकेंगे।
भयानक विनाश को आने से पहले रोकेंगे।
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
इंसान होके पैदा हुए हैं तो इंसानों का फर्ज निभाएंगे।
जो आटलू करीशु ने तो आ ग्लोबल वार्मिंग उभी पूछड़िए भागशे।
हाची बात हो रंगला।
बात हुई हमारी ग्लोबल वार्मिंग की, नॉन वायलेंस की। तो हिंसा मतलब क्या? क्या किसी को मारना पीटना यही हिंसा है? हिंसा मतलब है प्रकृति के तत्वों के साथ छेड़छाड़, प्रदूषण बढ़ाना, प्रकृति का विनाश करना। हम सब जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ऐसी हिंसा तो करते ही हैं। तो आज हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सच्चे अर्थ में अहिंसक बनेंगे
और सोते हुए को जगाएंगे।
Oh,
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियों से इन कलाकारों का हम अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। बहुत मेहनत, पुरुषार्थ और एक साधना के बल पर इन्होंने हमारी सनातन कृषि और ऋषि संस्कृति को हमारे सामने रखा है।